नमस्ते। सावित्री की श्रृंखला में हम लोग अब बुक वन कैंटो थ्री में प्रवेश कर रहे हैं और अब हम देखते हैं कि एक बुक वन कैंटो टू में हमें शेरविन परिचय देते हैं सावित्री के साथ और थोड़ा बहुत उनका परिचय और उस दिन का भोर का जिस दिन सत्यवान की मृत्यु विधाता ने निश्चित की है। अब जो कहानी चलेगी वो फ्लैशबैक में चलती है बहुत दूर तक और वो रिकनेक्ट होती है बुक एट में। तो अब बुक सेवन तक पूरी एक फ्लैशबैक है और ये पूरा फ्लैशबैक जुड़ता है बुक वन कैंटो थ्री की पहली लाइन से। ए वर्ल्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मॉर्टल बर्थ। सावित्री क्यों आई? क्योंकि सारी सृष्टि के अंदर उनके लिए पुकार थी, लेकिन इस पुकार को कोई एम्बॉडी करता है। सृष्टि के अंदर ये पीड़ा है हमेशा, खासकर धरती के अंदर ये पीड़ा है। हम लोग देखते हैं कि धरती माँ जाती हैं हर बार भगवान के पास और जब भूभार हरण के लिए भगवान को आवाहन करती हैं, तो ये जो पीड़ा है, जो अभिप्सा है पृथ्वी की, उसको कोई धारण करता है अपने अंदर। और वो जो धारण करता है धरती की अभिप्सा को, माता जी इसका बहुत विस्तार से वर्णन करती हैं कि शेरविंद कौन है। उन्होंने, वो सुप्रीम से आए हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर स्वयं को जड़ तत्व के साथ एक कर लिया ताकि वे धरती की पीड़ा को, जड़ तत्व के अंदर जो एंग्विश है, जो उसकी आवश्यकता है, जिस चीज़ के लिए उसके अंदर पुकार है, उसको वो अपने अंदर धारण कर सकें और तपोबल द्वारा हाइएस्ट तक पहुँचा सकें। तो अब बुक वन कैंटो थ्री से अशुपति की तपस्या प्रारंभ होगी और वो बुक थ्री कैंटो फोर तक चलेगी, यानी बुक वन कैंटो थ्री टू कैंटो फाइव, फिर बुक टू ऑल दी कैंटोस और फिर बुक थ्री कैंटो वन टू थ्री फोर। ये सारी अशुपति की तपस्या है। अब इस तपस्या हम देखते हैं कि तीन बुक्स में ये स्प्रेड आउट हैं। तो पहली बुक में हम देखते हैं कि अशुपति की तपस्या कैंटो थ्री और कैंटो फाइव में मूल रूप से, योगा ऑफ द किंग, दोनों का सेम नाम है लेकिन एक में है सोल्स फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस है और दूसरा जो कैंटो फाइव में है ग्लोरी ऑफ द स्पिरिट है, और बीच में कैंटो फोर है सीक्रेट नॉलेज। तो कैंटो थ्री, बुक वन कैंटो थ्री, वो पहला स्टेप है जिसमें अशुपति एक प्रकार से साइको स्पिरिचुअल रूपांतरण अपने अंदर अनुभव करते हैं और जिसके फलस्वरूप वो अज्ञान के घेरे से बाहर निकल आते हैं। लेकिन उसके पहले उसमें ये भी वर्णन है बुक वन कैंटो थ्री में कि अशुपति अज्ञान के घेरे में आए कैसे थे। तो ये ऑलरेडी वो मुक्त हो चुके हैं, वो मुक्त हैं। यानी दो प्रकार के जीव होते हैं श्री रामकृष्ण जो बताते हैं, सीमा भी इसकी बात बताती हैं। एक होते जीव कोटि, जीव कोटि हैं जो अज्ञान से प्रारंभ करके धीरे 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 एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए मुक्ति की ओर जाते हैं। मुक्ति से यहाँ मतलब है अज्ञान अचित अंधकार से मुक्ति, मूल मुक्ति। मुक्ति का वो जो अर्थ है जो आजकल निर्वाण प्राप्ति, ये बहुत बाद में आया, लेकिन वैदिक काल में मुक्ति का अर्थ होता था अचित अज्ञान अंधकार से मुक्ति। तो ये जीव कोटि होते हैं जो धीरे 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 चढ़ते हुए जाते हैं, असदो मा सदगम्या, जिस जो अभिप्सा है। लेकिन एक ईश्वर कोटि के जीव होते हैं जो मुक्त होने के बाद वापस आ जाते हैं बंधन में, और वो आते हैं एक दिव्य काम के प्रयोजन से। इसका क्लासिक एग्जाम्पल शेरविंद माता जी, तो खैर ईश्वर कोटि के भी परे अवतार हैं, लेकिन क्लासिक एग्जाम्पल है श्री रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जब आते हैं तो वो पहचान लेते हैं, कहते हैं अरे नरेंद्र तू आ गया, तेरी मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था। अब नरेंद्र को पता नहीं है कि वो कौन है, और श्री रामकृष्ण परमहंस बताते हैं कि कौन थे ये स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद। उन्होंने देखा था कि वो तपस्या कर रहे थे एक उच्च लोक में, वन ऑफ दी सेवन ऋषि सप्तऋषि अंगिरस, तो उनमें से एक है। और श्री राम कृष्ण जो विजन डिस्क्राइब करते हैं कि वो जाते हैं एक बच्चे के रूप में और उनको खींचते हैं कि चल नीचे, चल नीचे, चल मेरे साथ नीचे चल और फिर उनकी आँख खुलती है और वो नीचे आ जाते हैं। तो ऐसे तपस्वी हैं जो चेतना के उच्च लोकों में या तो मेडिटेट करते हैं या वहाँ से इस संसार को देखते हैं, उसकी गतिविधियों को, और वे निर्वाण लय ये नहीं उन्होंने स्वीकार किया है। वो मुक्त हैं, वो चाहे तो बंधन में आए या नहीं आए, लेकिन उनमें से कुछ हैं जो वापस बंधन में आते हैं इस संसार को प्रगति कराने के लिए, और उसमें कई संभावनाएं हैं। तो यहां पहले स्पष्ट कर दिया जाता है बुक 1 कैंटो 3 में कि अशुपति कौन है। अशुपति उनमें से हैं जो ऑलरेडी उच्च चेतना को प्राप्त कर चुके हैं, और वहां से उन्होंने वापस इस मर्त लोक में, मर्त शरीर में, इस अज्ञान से बंधन स्वीकार किया है, क्योंकि वे काम करने के लिए आए हैं। लेकिन जब एक बार ऐसा जीव भी जो ईश्वर कोटि का है वापस आता है, तो माता जी बताती हैं कि कुछ समय लगता है, जैसे स्वामी विवेकानंद कि फिर भी उनको समय लगा, वो नहीं जानते थे। श्री रामकृष्ण परमहंस ने देख लिया था, श्री रामकृष्ण परमहंस स्वयं ईश्वर कोटि के हैं, लेकिन उनको भी समय लगता है, क्योंकि जब जैसे ही हम इसमें उतरते हैं, ये तो रूपांतरित नहीं है अभी, तो जैसी माँ बताती हैं कि जब उसमें वो ऐसा बींग उतरता है तो ही स्टंड लिटरली, जैसे कोई ऊपर से गिरे तो चोट लगती है, थोड़ी देर के लिए हम अर्धचेतन हो जाते हैं या मूर्छित हो जाते हैं, फिर जब वापस आते हैं तो कुछ समय लगता है ये संभालने में कि मैं कौन हूँ। तो ऐसी एक अवस्था होती है जिसमें, और ये धीरे 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 फिर व्यक्ति पूरा रिकवर करता है। यही चीज़ हम माँ श्री अरविंद के जीवन में भी देखते हैं, विशेषकर श्री अरविंद के जीवन में, कि इट टेक्स टाइम टू रिकवर दैट फुलनेस जहाँ से व्यक्ति यहाँ पर आया है। तो पहले भाग में ये वर्णन है इसका कि अशुपति एक उच्च चेतना, ही इज ए बीइंग ऑफ द हायर कॉन्शियसनेस, और वे इनको अवतार भी कहते हैं। दो प्रकार से अवतार को समझा जाता है, एक उच्च चेतना से कोई भी अगर वापस आता है इस निम्न चेतना में तो उसको अवतार कहा जाता है, ये एक जनरल टर्म है। लेकिन अवतार का जो स्पेसिफिक मीनिंग है, जिस सेंस में गीता कहती हैं, वो है कि सुप्रीम स्वयं जब अपने स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं। तो यहाँ हम दोनों मीनिंग ले सकते हैं, पर जो सावित्री में मेंशन है कि अशुपति एक उच्च चेतना से जो फ्री हैं बीइंग, उनको आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक विशेष प्रयोजन से यहाँ पर आए हैं, और ये पृथ्वी की पीड़ा को अपने अंदर धारण करते हैं, एंग्विश की, और वे आए हैं, उनके आने मात्र से जो अनंत है और शांत है ये दोनों जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो अनंत क्षेत्र से आए हैं और वे वहाँ यहाँ सीमित क्षेत्र में आए, तो असीम और सीम तो उनके आने से ही जुड़ जाएंगे। और ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन होता है, ईच एक्शन लेफ्ट द फुटप्रिंट्स ऑफ ए गॉड, वो साधारण जीवन नहीं होता है, और वो उनकी डेस्टिनी होती है, नियति होती है, जिसको फुलफिल करते हैं। स्वामी विवेकानंद को देखिए कि 39 ईयर्स की एज में, या श्री रामकृष्ण परमहंस इन 58, मतलब पूरा एक विश्व समुदाय को बाहर से देखा जाए तो एक वर्नैकुलर पंडित, जिन्होंने पूरी शिक्षा भी नहीं शायद की होगी, और मंदिर में पुजारी और कहाँ, तो वे एक विशेष प्रयोजन से आते हैं। फिर उसके बाद इसी कैंटो में एक पूरी हमारी चैत्य की यात्रा का वर्णन है कि कैसे यहाँ तक, अब ये तो टेक ऑफ पॉइंट बहुत हाई है कि अशुपति ऑलरेडी उच्च चेतना में है, वहाँ से वो इस धरती पर आए हैं एक विशेष प्रयोजन से। वो प्रयोजन क्या है यहाँ पर बताया नहीं जा रहा है, केवल इंट्रोड्यूस किया गया है कि वे उच्च चेतना से हैं, यहाँ पर आए हैं। लेकिन वहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, तो वो एक पूरी यात्रा है कि हर मनुष्य वो यात्रा करता है, चैत्य की पूरी यात्रा है जो बुक 1 कैंटो 3 में है, कि कैसे 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 भिन्न भिन्न जीवों से, प्राणियों से, भिन्न अवस्थाओं से होता हुआ, मृत्यु पुनर्जन्म, मृत्यु पुनर्जन्म, इससे साइकिल से गुजरता हुआ, जो ईश उपनिषद में है बहुत सुंदर ढंग से कि अविद्याम मृत्युम तीर्थवा विद्याम अमृतम अश्नुते, यानी मृत्यु के द्वार से गुजरते हुए आदमी अविद्या को पार करता है और विद्या प्राप्त करके वो अमृतत्व को प्राप्त करता है। तो ये एक प्रोसेस है, और मृत्यु और रीबर्थ इस इवोल्यूशन का प्रोसेस है। मृत्यु और रीबर्थ कोई पाप पुण्य का खेला नहीं है, ये प्रोसेस है इवोल्यूशन का, और ये पूरा वर्णन होता है, हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा उसको, लेकिन पहले एक बैकग्राउंड हम लोग समझ लें। और वो उच्च चेतना में कैसे पहुँचे थे, ये सारा वर्णन है उसमें। और जब उस चेतना में व्यक्ति पहुँच जाता है तो उसके पास क्या क्या संभावनाएं खुलती हैं। तो एक संभावना जो अशुपति चुनते हैं, यानी एक संभावना है लय, लेकिन वे चुनते हैं टू टर्न दिस फ्रेल मड इंजिन टू हैव इन यूज़। तो आमतौर पर तो ये जो मड इंजन यानी हमारे शरीर इंस्ट्रूमेंट, ये किसके यूज़ के लिए होता है, डिज़ायर्स के लिए, साधारण हमारे आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, शरीर, भोजन, मैथुन, बच्चे, यही सब में यूज़ होता है ये जो हमारा मन प्राण शरीर है। लेकिन इस देह प्राण और मन की यष्टि को, आधार को एक नई उपयोगिता देने के लिए, टू टर्न दिस फ्रेल मड इंजन टू हैव इन यूज़। अब यहाँ फ्रेल वर्ड भी है जो बता रहे हैं कि आमतौर पर ये तैयार नहीं है उसके लिए, क्योंकि अगर उच्च शक्तियां उतरेंगी तो टूट जाएगा, ये बना ही नहीं उसके लिए। नियाग्रा फॉल के नीचे आप रख देंगे लुटिया को तो लुटिया तो बहेगी, आप भी बह जाओगे उसके साथ में। तो एक लंबी प्रिपरेशन से मानव जीवन गुजरता है, वो भी इसका वर्णन है, ए लॉन्ग डिम प्रिपरेशन इज ह्यूमन लाइफ। और उससे गुजर के काफ़ी समय के बाद वो तैयार होता है पक करके, यानी ये काफ़ी इवॉल्व सोल्स हैं। हालांकि ये कंसेप्शन अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम लोग नॉर्मली मॉडर्न जो एक जीवन वाली जो सोच है उसके अनुसार सब मनुष्य समान है। एसेंशियली तो सब समान है, मनुष्य क्यों, सारे जीव जंतु सब समान है, पेड़ पौधे सब समान है, एसेंशियल डिवाइन एसेंस। लेकिन भारतवर्ष में जो इवोल्यूशन है उसको भी समझा गया है, तो समान होते हुए भी मैनिफेस्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भेद है। और इस कारण हम देखते हैं कि फॉर इंस्टेंस अगर आप शास्त्रों को पढ़ो तो उसमें कहा गया है कि ब्रह्म हत्या बहुत बड़ा पाप है। तो कहा जाए तो किसी भी मनुष्य की हत्या पाप होनी चाहिए, मॉडर्न चीज़ तो ये बताएगी कि वो तो दोषपूर्ण है। लेकिन ब्रह्म हत्या क्यों इतनी बड़ी मानी गई, क्योंकि वो इतना रियलाइज्ड उच्च कोटि का बीइंग है कि जब आप उसका संहार करते हो तो ऐसी वो काफ़ी सृष्टि के कई तत्वों को अपने अंदर समेटे हुए है और वो सारी चीज़ें बिखरती हैं, यानी एक सृष्टि के अंदर डिसऑर्डर पैदा होता है। तो आप केवल एक व्यक्ति को नहीं मार रहे हो, आप उसकी मृत्यु के साथ में बहुत सारा डिसऑर्डर इस सृष्टि के अंदर पैदा कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें उसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे ये तैयारी होती है। और फिर अशुभ एक मूल रूप में पहला जो मूवमेंट है उसमें यह है कि साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके साथ एक पूरा डिसर्नमेंट अपने आप, निरीक्षर विवेक, सच क्या है झूठ क्या है ये अपने आप एक इंट्यूटिव नॉलेज अंदर से उभरने लगती है। फिर श्री अरविंद दूसरा मूवमेंट इसी कैंटो में प्रारंभ करते हैं, जिसमें बताते हैं कि कैसे कैसे अनेकों अनुभव हैं, इनर बीइंग खुलता है तो कैसे अनुभव होते हैं, ऊपर से जब ज्ञान स्वतः स्फूर्त अंदर में उतरने लगता है प्रेरणा के द्वारा, अंतर्भास के द्वारा, रेवलेशन के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, ये सब अनुभव जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है वो सब इसमें वर्णन है। यानी ही इज ए बीइंग जो फोररनर है कि ये आगे ये सब होगा मनुष्य के अंदर, बट ही इज एक्सपीरियंसिंग। और इसी के साथ में जब वो अज्ञान से पूरी तरह फ्री हो जाते हैं, यहाँ अज्ञान से फ्रीडम का अर्थ थोड़ा भिन्न है देन जो मोक्षवादी धारा है उसमें है कि आवागमन से मुक्ति, लेकिन वो एक कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स को हम मिस करते हैं। यहाँ हम चेतना के दायरे को बढ़ाते हुए उच्च चेतना में जब प्रवेश करते हैं, चैत्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो अज्ञान से फ्रीडम हो जाती है, क्योंकि वी नो हु वी आर। तब हम ये जानते हैं कि वी आर नो मोर डेथ हंटेड क्रीचर, वी आर कॉन्शियस ऑफ आर इमोर्टैलिटी। फिर कैंटो फोर में अशुपति ने क्या प्राप्त किया, सीक्रेट नॉलेज। सीक्रेट नॉलेज यानी वो ज्ञान जो हमें मन के द्वारा नहीं आ सकता, इंद्रियों के द्वारा नहीं आ सकता, इसलिए वो सीक्रेट है। लेकिन आत्मदर्शन द्वारा वो सब जो छिपा है हमें प्रकट होता है। तो वो पूरा विस्तार में है, उसमें प्रोसेस नहीं बताई गई है कि अशुपति को ये नॉलेज मिली कैसे, तो ज्ञान से मुक्त हो गए ये बताया गया। और पांचवें कैंटो में है कि उनको ये नॉलेज कैसे मिली, फोर्थ कैंटो बीच में आता है दोनों के। पांचवें कैंटो में जो सीक्रेट नॉलेज है वो कैसे मिली उसका आधार भी है, क्योंकि उनको एक्सेस मिल जाता है, एक ऐसी चाबी मिल जाती है जिसके द्वारा वे वहां प्रवेश करने लगते हैं जहां किसी ने प्रवेश नहीं किया है। तो उस चाबी के द्वारा वो द्वार खोल के और वो सारा ज्ञान, इसीलिए हम देखते हैं जब श्री अरविंद सीक्रेट ऑफ द वेदास या एसेज ऑन द गीता लिखते हैं, आप देखिए फ्री फ्लोइंग कमेंट्री है एसेज ऑन द गीता। अब वो एक एक श्लोक लिख के जैसे ट्रेडिशनली सिखाया जाता है, ये श्लोक है इसका ये अर्थ है, और अर्थ कैसे है ये इसका शाब्दिक अर्थ है, ये भावार्थ है, श्री अरविंद ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं, इट्स ए फ्री फ्लोइंग ऐसे, लेकिन प्रत्येक श्लोक कवर्ड है, लुक एट द ब्यूटी ऑफ इट। ऐसे गीता एक मार्वेल है। तो ये कैसे हुआ सारा स्वतः स्फूर्त, क्योंकि वो एक्सेस है उस ज्ञान को, जो हम जो कुछ भी ज्ञान है वो कहीं ना कहीं स्थित है किसी भूमि में, और वो नए वर्ड्स लेके आइडियाज लेके प्रकट हो सकता है, यानी हम शब्द से बन सकते हैं या हम ज्ञान की उसमें जा सकते हैं। तो श्री अरविंद ज्ञान तक पहुंच गए हैं शब्दों के माध्यम से नहीं, स्वयं अपनी तपस्या के द्वारा। तो अब वो उसी ज्ञान को व्यक्ति अनेकों रूप में प्रकट कर सकता है, क्योंकि वो ज्ञान अपने आप में एक प्रकाश है, एक सत्य है, वो शब्दों के परे है, आइडियाज के भी परे है। तो सीक्रेट नॉलेज में उसका वर्णन है। और पांचवें कैंटो में कि जब ये अशुपति रियलाइज कर लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वैदिक काल के अनुभव हैं, कई मिस्टिक्स के अनुभव हैं, तो अचानक जब ये साधना में तपस्या में हैं अशुपति, तो उनके अंदर एक विचार आता है, एक बड़ा बड़ी सुंदर अभिप्सा जागती है कि ये सब अनुभव तो बहुत अच्छे हैं अंदर के लिए, लेकिन ये शरीर ऐसा क्यों है। ए विल ए होप इमेंस नाउ सीज्ड हिज हार्ट एंड टू डिसर्न द सुपर ह्यूमन फॉर्म, कि क्या कोई ऐसा शरीर भी है जो वो सब जो अंदर में मैंने अनुभव किया है तपस्या द्वारा, ऋषियों ने अनुभव किया है, वो उस सत्य को अपने अंदर धारण कर सके। क्या कोई ऐसा देह भी है, बॉडी भी है, क्या ऐसा संभव है? क्योंकि अंदर में इतना विशाल लेकिन बाहर में इतनी सीमाएं, और जब हम उसमें बनते हैं तो वे सीमाएं स्वतः ही आती हैं, बिकॉज ह्यूमन बॉडी की अपनी जो समस्याएं हैं, यू विल टेक अपॉन, यू कांट हेल्प इट। अगेन स्वामी विवेकानंद जो अंदर से फ्री थे और कैसे उन क्रोध आ जाता था, तो किसी ने उनसे पूछा, सिस्टर निवेदिता ने शारदा माँ से पूछा कि इनको क्रोध क्यों आता है, ये अदरवाइज तो इतना विशाल एकदम लगता है ब्रह्म चेतना में पहुंचे हुए हैं। तो वो कहते हैं, अरे मालूम नहीं है आपको, जानबूझकर डिवाइन मदर ने इनके ऊपर थोड़ा ज्ञान की चादर डाली हुई है, क्योंकि नहीं तो इनको जब पता चल गया कि ये कौन है, ये तो छोड़ के चले जाएंगे। और श्री रामकृष्ण ने भी कहा था कि आई हैव लॉक्ड द डोर एंड गिवन द की टू डिवाइन मदर, वो तब देंगी जब तुमको जो काम करना है पूरा कर दोगे, जब पता चल जाएगा तुमको कौन हो तो यू विल गो अवे। लेकिन श्री अरविंद के योग में गोइंग अवे नहीं है, पता चल जाएगा तुम कौन हो तो तुम यहाँ काम करोगे। सो ये एक डिपार्चर शुरू होता है। और क्यों प्रारंभ होता है, हम देखते हैं कि अशुपति अचानक इस अभिप्सा के फलस्वरूप एक अनुभव उनको होता है कि वो जो उच्चतम चेतना है वो उनके शरीर में एक डिसेंट प्रारंभ होता है, जो पूरे उनके मन प्राण देह को रूपांतरित कर सकती है, यानी उनकी अभिप्सा के फलस्वरूप। अब उनके सामने एक डिलेमा है, या तो वो बढ़ें और रूपांतरित कर लें अपने आप को, या वे अकेले रूपांतरित, उनके अंदर तो करुणा में है, तो वो श्री अरविंद के ही सारे अनुभव हैं, अशुपति के अनुभव, तो वो कहते हैं नहीं, मैं अपना रूपांतरण त्यागूंगा, रिनाउंस करूंगा, और अब मैं पूरी सृष्टि के लिए, मनुष्य के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव बन के जाऊंगा, और उस उच्चतम सत्य को नीचे लाने के लिए। तो वो हम बुक टू में देखते हैं, जिसमें अशुपति पूरी चेतना के स्तर उनको लांघते हुए, पूरी टेक्नोलॉजी, ये आवश्यक नहीं है, अगर आपका पूरे विश्व के रूपांतरण का योग नहीं है तो ये जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस योग में आवश्यक है। तो लांघते 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 ये क्यों बना है, कैसे बना है, कैसे गिरा है, कहाँ से सृष्टि उत्पन्न हुई है करते हुए, वो सीधा जगन माता के पास पहुँच जाते हैं, डोर्स ऑफ द अनोएबल, और जानते हैं कि वे अगर आ जाएं, अब उनकी व्यक्तिगत साधना, अब वो सारी पृथ्वी और मनुष्य के लिए वहाँ पे याचक बन के चले जाते हैं, कि ये तो रूपांतरण जो मैं अनुभव कर रहा था, ये तो संभव केवल तभी है जब आप आ जाओ, और सभी मनुष्य, ये प्रसाद में अकेले नहीं खाना चाहता हूँ, सब लोग आएं, सबके सबका कल्याण हो। तो जगन माता कहती हैं कि आपने अपने तपस्या से ये प्राप्त कर लिया है, आप चाहते हो कि सब लोग ये रूपांतरण प्राप्त करें, लेकिन ये तो असंभव सा कार्य है, क्योंकि होगा लेकिन बहुत समय के बाद होगा, प्रतीक्षा करो, आप तो बहुत आगे आ गए हो रेस में, पता भी नहीं है, देखो आसपास किसी को ये रूपांतरण नहीं चाहिए, साधारण मनुष्य को तो केवल रोटी कपड़ा मकान चाहिए, वो उसी में बहुत खुश है, और कोई नहीं है पास पास, कोई नहीं है, हजारों वर्ष तक कोई ऐसी अभिप्सा नहीं है, तो प्रतीक्षा करो। लेकिन अशुपति कहते हैं कि नहीं, अब मैंने देख लिया है, मैं तो प्रतिनिधि बनकर आया हूं, तो आपको आना पड़ेगा, और यदि आप स्वीकृति दे दें तो कौन सी ऐसी चीजें जो असंभव है। तो हम फिर देखते हैं कि डिवाइन मदर उनको तथास्तु कहती हैं बुक 3 कैंटो 4 में, और ये निश्चित हो जाता है कि डिवाइन मदर अब धरती पर आएंगी, यानी दैट इज द ओकेजन ऑफ सावित्रीज बर्थ। अब ये जो पूरी बहुत लंबी यात्रा है, यानी सावित्री में अगर सबसे ज्यादा पेज वाइज और कैंटो वाइज किसी सत्य को डेडिकेट किया है श्री अरविंद ने, तो वो अशुपति का योग है, ऑलमोस्ट 340 पेजेस, नियरली हाफ ऑफ सावित्री इज अबाउट अशुपतिज योग, जो उनकी अपनी अनुभव हैं, तो इट्स फुल्ली अंडरस्टैंडेबल। और उसके बाद में डिवाइन मदर आती हैं, और सारा डिवाइन मदर की अपनी साधना, सत्यवान से मिलन, ये सब क्रम उसके आगे बढ़ता है, लेकिन मूल रूप से जो फर्स्ट पार्ट बुक का है, बुक वन, बुक टू, बुक थ्री, ये अशुपति के योग को डेडिकेटेड है, जो बेस ले करते हैं, फाउंडेशन ले करते हैं, यहाँ से हमारी अभिप्सा को जगन माता तक पहुँचाते हैं, उनकी स्वीकृति, उनका आश्वासन, उनका वरदान लेकर के आते हैं कि वो यहाँ पर उसकी स्थापना करेंगे, एक नए जगत की, एक नए सत्य की, एक नए युग की, एक नई चेतना का मनुष्य के अंदर संचार होगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा उसमें से पढ़ेंगे, बुक वन कैंटो थ्री, अज्ञान से मुक्ति, सोल्स इग्नोरेंस। अब इग्नोरेंस यहाँ पर क्या है, पहले श्री अरविंद इसको कहते हैं द योगा ऑफ द किंग। इसके दो तरह से हम कर सकते हैं, एक है राजयोग, और कुछ हद तक ये सच है कि श्री अरविंद ने राजयोग की कई प्रोसेसेस प्रारंभ में, स्टिलिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस, स्टिलिंग ऑफ द माइंड, क्योंकि राजयोग प्रारंभ करता है फ्रॉम द माइंड, उनके अपने योग में इसका एक अपना स्थान था। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, योगा ऑफ द किंग। अशुपति कौन है? राजन है, और राज राजेश्वर है, तो योगा ऑफ द किंग। तो इस प्रकार के इसको हम वैसे भी ले सकते हैं कि राज ऋषि हैं, यानी उन्होंने ब्रह्म ज्ञान के पहले वो एक राज ऋषि हैं। अब हम लोग सोचते हैं कि राज ऋषि एक पदवी है जिसके बाद ब्रह्म ऋषि का पद मिलता है, लेकिन अगर हम उपनिषदों में जाएं तो बहुत इंटरेस्टिंग है, राज ऋषि प्रतिनिधित्व करते हैं एक ऐसे योग का जिसमें व्यक्ति संसार में रहता हुआ योग करता है, और अशुपति उनमें से थे, और उनको वो ज्ञान प्राप्त होता है जो संसार से कटकर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो उनको वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और ये एक एक्चुअल कहानी है उपनिषदों में, जहाँ उद्दालक इत्यादि ऋषि गण, पहले उनके पास और ऋषि आते हैं, कहते हैं हमें वैश्वानर के बारे में बताइए कि ये सृष्टि कैसे बनी है, सृष्टि के पीछे क्या सत्य है, उसके बारे में बताइए। तो कहते हैं मुझे ब्रह्म ज्ञान तो है लेकिन ये नहीं है, हालांकि ब्रह्म ज्ञान में यू शुड नो एवरीथिंग, पर ये एक डायनामिक साइड है ट्रूथ का। तो फिर वो ऐसे ऐसे करके वो कहते हैं अशुपति योगी जो हैं उनके पास ये ज्ञान होगा। तो अशुपति के पास जाते हैं, और वो राजा हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो उन सबको कहते हैं आप हमारे विश्राम गृह में विश्राम कीजिए, कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अगले दिन वो चर्चा करते हैं इस पर, सबसे पूछते हैं कि आपके क्या अनुभव हैं, तो प्रत्येक ऋषि बताते हैं कि हमने ये रियलाइज किया है इस पथ से चलकर, और अशुपति उसमें थोड़ा एक और सत्य को थोड़ा विस्तार कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और वो कंप्लीट नॉलेज होती है। यानी कंप्लीट नॉलेज जो ब्रह्म की है वो यूनिवर्स को इंक्लूडेड है, यानी अगर आप केवल अपने आत्मज्ञान को जानते हो, जिसको कहते हैं एनलाइटनमेंट, वट एवर इट मीन्स, या सेल्फ नॉलेज, या आत्मा को जान लेना, ये इनकम्प्लीट है। उस नॉलेज का कैसे विस्तार होता है सृष्टि के अंदर, जो हम गीता में भी देखते हैं, हिंटेड ज्ञान विज्ञान योग, यानी ज्ञान है जब आप प्राप्त, सेल्फ नॉलेज है, विज्ञान क्या है, उसी ज्ञान का विस्तार है अनेकों अनेकों रूपों में, अनेकों अनेकों चीजों में। तो ये सेल्फ नॉलेज का जो फर्दर एक्सटेंशन है, ये पूरी सृष्टि अश्वत्थ ट्री जिसकी बात की गई है, जो ऊपर से नीचे हम देख के समझ सकते हैं, टॉप डाउन व्यू अगर मॉडर्न लैंग्वेज में कहें, तो वो सारा विज्ञान तो अशुपति के पास वो है। तो ये एक तीसरा इसका अर्थ है। तो ये सारे चीज़ें इसमें आती हैं, और पहले इसके दो स्टेप हैं, हम सब जानते हैं इस योग के। पहला स्टेप है कि सोल मस्ट बी रिलीज्ड फ्रॉम इग्नोरेंस, जब तक वो नहीं होता तो नेक्स्ट स्टेप जो है रूपांतरण का, उसके बारे में सोचना भी व्यर्थ है। फर्स्ट स्टेप इज टू रियलाइज द सोल, टू ओपन टू द हायर कॉन्शियसनेस, ये इसमें हम देखते हैं। इसमें बहुत विस्तार में नहीं बताया जा रहा है कि सोल को रियलाइज कैसे किया, क्योंकि अशुपति का टेक ऑन पॉइंट बहुत हाई है, वो आएगा सावित्री के योग में कि हाउ टू रियलाइज द सोल, कैसे रियलाइज किया, क्योंकि सावित्री मनुष्य को रास्ता दिखाएंगी। पर श्री अरविंद के साथ अशुपति के योग में तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सीधा वो उस चोटी पर पहुंच गए हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके पुकार रहे हैं सबको, चलो मेरे साथ चलो। तो अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, जगह जगह से इसका आनंद लेंगे। जैसे प्रारंभ में ही है कि अशुपति कौन है, एक लाइन है इसमें, affiliated to cosmic space and time, अति विशाल है अंदर में, and paying here God's debt to earth and man, भगवान का एक कर्ज है मनुष्य के ऊपर, धरती के ऊपर, तो वो उतारने आए हैं उसको, paying here, वो कर्ज क्या है कि धरती माँ ने स्वीकार किया है कि मैं जड़ तत्व बन जाऊंगी, मेटीरियल दे दूंगी आपको, रॉ मेटीरियल, जिसमें आप अपने आप को डाल करके मुझे अपने जैसा बना लो। तो भगवान जानते हैं कि इन्होंने स्वीकार किया ये सेक्रीफाइस, तो अब उसमें भगवान स्वयं को डालते हैं। तो कैसे डालते हैं, एक तो है कि मूलभूत रूप से वो धरती के अंदर समा जाते हैं, फिर टाइम टू टाइम वो अवतार रूप में धरती के ऊपर आते हैं ताकि इस धरती माँ के साथ जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है, डेट क्या होता है कि आप एक कहीं साइन करते हैं कि मैं ये करूँगा आपको ये करना है। तो यहाँ पर धरती माँ ने स्वीकार किया है कि मैं अपने देवत्व को त्यागूंगी और मैं जड़ तत्व बन जाऊंगी। तो भगवान ने भी अपनी ओर से स्वीकार किया, जब तुम जड़ तत्व बन जाओगी तो मैं बार बार आके इसी जड़ तत्व को वरण करूंगा और तुम्हें अपने स्पर्श द्वारा रूपांतरित करूंगा। तो अशुपति उस श्रेणी में से हैं जो आए हैं अब डेट देने के लिए। और नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं कि हिज सोल लिव्ड एज इटर्निटीज डेलीगेट, वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शाश्वत का। और उनका मन कैसा है, हिज माइंड वॉज लाइक ए फायर सीलिंग हेवन, यानी वो मन, नॉर्मली हम लोगों की मन की गति क्या होती है इस साधारण जीवन में, लेकिन उनका मन उसके अंदर एक ऐसी अग्नि जल रही है जो स्वर्ग के पार जा रही है। हिज विल ए हंटर इन द ट्रेल्स ऑफ लाइट, एन ओशियन इम्पल्स लिफ्टेड एवरी ब्रेथ, ईच एक्शन लेफ्ट द फुटप्रिंट्स ऑफ ए गॉड। अक्सर लोग कहते हैं मनुष्य के कर्म कैसे होते हैं कि आप जैसे सैंड्स ऑफ टाइम के ऊपर आपने चले, एक हवा का झोंका आया और वो चला गया, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके फुटप्रिंट्स जो आने वाले समय तक रहते हैं। तो अशुपति बिलोंग्स टू दैट कैटेगरी, ईच एक्शन लेफ्ट द फुटप्रिंट्स ऑफ ए गॉड, ईच मोमेंट वॉज ए बीट ऑफ प्यूजा बींग्स। अब इसका विस्तार से हम लोगों ने किया हुआ है तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, अपने टेम्पटेशन को लोभ को संवरण कर रहा हूँ। एक एक एक्शन जो फुटप्रिंट्स ऑफ ए गॉड है वो श्री अरविंद के जीवन में देखा जा सकता है, पर वी विल नॉट गो इनटू दैट। अब हम लोग एक पूरा वर्णन आता है कि मनुष्य की जो यात्रा है वो क्या है वास्तव में। हम लोग बाहर से देखते हैं जन्मा, लोग जन्मे, बड़े हुए, मर गए, लेकिन इस बाहरी सीन्स जो अनेकों अनेकों हो रहे होते हैं उसके पीछे कुछ हो रहा होता है जिसको हम नहीं जानते। हमारी एक बाहरी जीवन यात्रा है, उसके पीछे एक अंदर की जीवन यात्रा है। जब बाहरी जीवन की यात्रा के सीन्स को देखते हैं तो हमको अटपटा सा लगता है कि क्या केओस है, क्या डिसऑर्डर है, लेकिन जब अंदर के सूत्र को पकड़ते हैं तब हमको समझ आता है कि बाहर के जो घटनाक्रम है इसके पीछे क्या लॉजिक काम कर रही है। तो यहां पर चैत्य सत्ता का बड़ा अद्भुत वर्णन है, दिस बॉडीली अपियरेंस इज नॉट ऑल। जो ये समझता है कि देह आत्मबोध, वो अभी तैयार नहीं योग के लिए। योग का प्रारंभ ही यहां से होता है कि शरीर के परे कुछ है। तो दिस बॉडीली अपियरेंस इज नॉट ऑल, द फॉर्म डिसीव्स, द पर्सन इज ए मास्क, यानी एक मास्क तो अभी हम लोग पहने, एक दूसरा मास्क है जो ओरिजिनल है। ये हमारा व्यक्तित्व ही मास्क है और उसके ऊपर से मन ने एक नया मास्क ऐड कर दिया है जिसको कहते हैं दिखावा, शो एंड शैम। जो नहीं है वो व्यक्ति दिखाना चाह रहा है। तो द पर्सन इज ए मास्क, इवन विदाउट दैट इट्स ए मास्क। जो अंदर में सत्य है, बाहर से रावण क्या कहता है, बंदर, लेकिन श्री राम वो क्या कहते हैं, सेवक, भक्त। और भगवान शिव क्या कहते हैं, रुद्र अवतार। ये देखिए दृष्टि है देखने की, कि बाहर से जब हम देखते हैं तो केवल बाहरी रूपरेखा को देखते हैं। हिड डीप इन मैन सेलेस्टियल पावर्स कैन ड्वेल हिज फ्रेजाइल शिप, फ्रेजाइल शिप यहां बॉडी का वर्णन है, कन्वेज थ्रू द सी ऑफ इयर्स एन इनकॉग्निटो ऑफ द इम्पेरिशेबल। वही एक है जो हमारे सच्चा परिचय है लेकिन हम नहीं जानते, तो इनकॉग्निटो। जैसे एक जहाज में छिप करके लोग ट्रैवल कर रहे हैं जिसका कोई पासपोर्ट नहीं, लाइसेंस नहीं, टिकट नहीं, नाम नहीं, लेकिन है जहाज पर, अदृश्य रूप में कोई ट्रैवल कर रहा है, तो इनकॉग्निटो ऑफ द इम्पेरिशेबल। लेकिन वही सबसे बड़ा व्यक्ति है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। ए स्पिरिट दैट इज ए फ्लेम ऑफ गॉड अबाइड्स, ए फायरी पोर्शन ऑफ द वंडरफुल आर्टिस्ट ऑफ हिज ओन ब्यूटी एंड डिलाइट, इमॉर्टल इन अवर मॉर्टल पॉवर्टी। उसके बिना सारी धन संपदा, एक गरीबी वो है, रियल विपन्नता है। विपन्नता वो नहीं है, माता जी कहती हैं कि विपन्नता वो नहीं है कि कोई बाहर से धन पैसे नहीं है। विपन्नता क्या है, जब आत्मा जागी नहीं है, सचेत नहीं है, और ये जब जाग जाती है जब हम उसको जान जाते हैं मोर एक्यूरेटली, जाग जाना तो एक बहुत प्रारंभिक स्टेप है, जब हम जान जाते हैं कि हम वो हैं, तब विपन्नता हमारी अंदर से दूर होती है. नहीं तो हम विपन्न हैं. क्यों विपन्न हैं? क्योंकि जो असली चीज़ है संपदा, देवी संपदा, वो चैत्य से ही आती है. जितने भी आप गुण देख लो, चाहे वो करुणा हो, दया हो, तेज हो, अक्रोध हो यानी क्रोध का अभाव, शांति हो, ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो, धैर्य हो, ये सारी चीज़ें चैत्य की जाग साथ आइडेंटिफाई होने से आती है. श्रद्धा हो, करेज हो, प्रेम हो, ये सब वहाँ से इमर्ज करती हैं. तो जब चैत्य के साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं तो संपन्न हो जाते हैं अंदर से. और ऐसे संपन्न होते हैं कि इनमें से कोई दो चीज़ें, अदर डे ऑल्सो हम लोग इसकी बात कर रहे थे श्री अरविंद के एफोरिज्म में, कि मान लो कहे कि दो चीज़ें तुम्हारे पास होनी चाहिए, बाकी सब दो चीज़ें रख लो, तो क्या रख सकता है व्यक्ति? शिरविन कहते हैं फेथ एंड करेज रख लेना. ये दो चीज़ें कैन मेक द सोल अलाइव, कम अलाइव. यही दो चीज. और अगर कहें एक चीज, तो अर्जुन ने जैसे चुना श्री कृष्ण को, चुन लेना फेथ को, रख लेना दोनों में से, क्या हमें उनमें फेथ है, वो सब कर लेंगे. तो ये जो इसकी, ये व्यक्ति को संपन्न बनाता है. हम अभी भी हम देख रहे हैं कि लोग हैं जिनके अंदर श्रद्धा है, किसी प्रकार का भय नहीं है. और वास्तव में आई वॉज वेरी सरप्राइज. ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उनको कोरोना होता है कि नहीं होता है, लेकिन मुझे अद्भुत लगा और आश्चर्य हुआ और प्रसन्नता हुई, सुखद आश्चर्य हुआ कि लोगों ने कहा कि जगन्नाथ हम तो उनके साथ जाएंगे. इट इज़ समथिंग अनप्रेसिडेंटेड. दिस इज माई इनर फीलिंग. बात ये नहीं है कि उनको कोरोना होता है कि नहीं होता है, लेकिन ये एक श्रद्धा का एक संकेत है जो बहुत सुंदर बात है. और वहीं दूसरी ओर होती विपन्न आदमी, सारे पैसे हैं, धन संपदा है, अंदर से डरा हुआ है, तो इसलिए संपन्नता और विपन्नता. तो यहाँ श्री अरविंद कहते हैं इमॉर्टल इन अवर मॉर्टल पॉवर्टी. और इसका पूरा वर्णन है आगे चल के, और ये पूरा पैसेंजर फ्रॉम Determining predestined shape and act, passenger from life to life, from scale to scale, changing his image self from form to form, he regards the icon growing by his gaze and in the womb foresees the coming God. चैत्य जानता है कि मुझे, उसके पास फ्यूचर की ब्लू प्रिंट है और वो अपने जीवन को ले जाता है उस तरफ. ऐसे सर्कमस्टांसिस होने लगेंगे. अब कई लोग देखते हैं कि अचानक उनके जीवन की बाहरी चीज़ें एकदम बदल गई, तो उनको समझ में नहीं आता है क्यों बदली. फॉर बेटर और फॉर वर्स, इट कैन हैपन बोथ वेज. अब ये तब होता है जब अचानक, नॉर्मली एक जो प्रोसेस है इवोल्यूशन की बड़ी स्लो है, आप जिस परिवेश में जन्मे उसी में वैसे ही होके चले गए. लेकिन कभी कभी जब चैत्य का बाहर प्रकट होने लगता है और वो चेंज बाहर आता है, तो आप कई जन्मों की यात्रा एक जन्म में क्रॉस करते हैं और आप देखेंगे कि सब कुछ बाहर का बदल जाता है. इट इज़ ए ड्रास्टिक चेंज. और जैसे जैसे आप सीढ़ियों को लांगेंगे, वैसे वैसे ये परिवर्तन होता जाएगा. इट्स लाइक यू आर इन ए फास्ट बुलेट ट्रेन, तो बड़ा डिसओरिएंटिंग हो सकता है. यहाँ उसका वर्णन है कि कैसे ऐसे यात्रा करता करता जो हमारे अंदर देही है, वो एट लास्ट द ट्रैवलर ऑन द पाथ्स ऑफ टाइम अराइव्स ऑन द फ्रंटियर्स ऑफ इटर्निटी. In the transient symbol of humanity draped, he feels the substance of undying self and loses his kinship to mortality. तो तब क्या होता है जब हम जान जाते हैं चैत्य को? Then we know we are immortal. तब सबसे जो अच्छी बात होती है, पहली चीज, और वो कोई illusion delusion नहीं है. लोग बोलेंगे you know that you are immortal. आप मृत्यु से डर नहीं सकते क्योंकि आपको पता है कि ये रियल नहीं है, ये केवल एक दृश्य है. सो यू बिकम अवेयर ऑफ दैट. ए बीम ऑफ द इटर्नल स्माइट्स हिज हार्ट, हिज थॉट स्ट्रेचेस इनटू इनफिनिट्यूड. स्वतः ही फिर ये जो साइको स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है कि उसका मन अपने आप उस उच्चतम लोकों की तरफ जाने लगता है. ऑल इन हिम टर्न्स टू स्पिरिट वास्टनेसेस. फिर ऐसे बींग को आप एक नैरो श्रेणी में, कैटेगरी में, नियम में बद्ध नहीं कर सकते क्योंकि वो इस प्रकार से उसके अंदर विशालता प्रकट होने लगती है. His soul breaks out to join the over soul. तो आप ऐसे बींग को एक, कई लोग होते हैं ना बहुत अपने ही अहंकार के दायरे में जन्म लेते हैं, उसे बड़ा गर्व करते हैं, घर में फोटोग्राफ लगाते हैं कि ये देखो ये मैं हूँ, ये मेरे पता नहीं पौत्र हैं, ये मेरे दादाजी हैं. फिर थोड़े दिनों बाद उनके ग्रैंड चाइल्ड भी बोलता है ये देखो मेरे दादाजी थे. यही जीवन, उसी में प्राउड फील करते हैं. लेकिन जब आप ओवर सोल को ज्वाइन कर लेते हो, किसी को मालूम है स्वामी विवेकानंद के पिताजी का क्या नाम था? इट्स इरेलेवेंट. या श्री रामकृष्ण के पिताजी का, इट इज इरेलेवेंट. वो एक अलग. श्री राम जी का सरनेम किसी को मालूम है? कृष्ण जी का सरनेम मालूम है? इट बिकम सो इरेलेवेंट व्हेन यू अराइव एट दैट स्टेट, बिकॉज यू हैव गॉन बियॉन्ड. ये महामानव की जो श्रेणी होती है. तो ये पूरा बहुत सुंदर वर्णन है, थोड़ा सा हम इसको पढ़ेंगे. He has drunk from the breasts of the mother of the worlds. A topless supernature fills his frame. She adopts his spirit's everlasting ground as the security of her changing world and shapes the figure of her unborn mites. तो फिर क्या होता है, एक समय आता है इस विकास में होते होते कि डिवाइन मदर उस बीइंग को अपने आर्म्स में ले लेती हैं. फिर कहती हैं, अब ये जो तुम्हारी डेस्टिनी है, ये मेरी जिम्मेदारी है. तब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो जाते हो, आप भगवान के बंदर बन जाते हो. जहाँ वो नचाते हैं, डुगडुगी बजाते हैं, वहाँ आप नाचते हो जैसे नाचते हो. अब संसार जो देखे जैसे समझे, लेकिन यू बिकम द मंकी ऑफ द लॉर्ड और चाइल्ड ऑफ द लॉर्ड. शी अडॉप्ट्स कि भाई अब ये मेरा है. ये कहानी का वर्णन भी किया, एक डाइनिंग रूम में कोई व्यक्ति पूरा खूब सारे बर्तन लेकर के जा रहे थे, तो किसी ने मजाक उड़ाया, कहा ओ कुली कुली. तो उन्होंने कहा यस हर कुली, माता जी का कुली हूं मैं. केवल कुली नहीं हूं, माता जी का कुली हूं. बहुत अंतर है. माता जी का कुली, माता जी का दास, यानी उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान अपने सेवक के साथ, अपने भक्त के साथ कैसे व्यवहार करते हैं. नंदी की और हनुमान जी की और अंगद की स्टोरीज हम सब जानते हैं. बाहरी रूप से मंकी हैं, पांव उड़ा देते हैं तो कोई राक्षस की. ये कहानियाँ एक इंडिकेटिव है कि उस अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं जहाँ डिवाइन मदर अब हमारी डेस्टिनी को अपने हाथ में लेके चलती है. वी आर सिक्योर इन हर. और ऐसे कितने उदाहरण हैं डिवाइन मदर के अपने लाइफ में कि कोई आया और कहा, माँ मुझे किसी ने कहा है कि मेरा जीवन बहुत छोटा है. माँ कहती दिखाओ अपना हाथ, और माँ देखती हैं, कुछ देर कॉन्सेंट्रेट करती हैं, फिर हाथ के ऊपर उसके अपना हाथ लगाती हूँ, कहती नाउ ऑल दैट इज गॉन, फॉरगेट अबाउट इट. जैसे विधाता ही हटा देते हैं. दूसरे, आपको पता होगा कई लोगों को, पृथ्वी सिंह नाहर जी जिन्होंने टाइप किया श्री अरविंदो की राइटिंग्स, और जब कहीं पर लोगों को प्रॉब्लम होती थी समझने में कि श्री अरविंद ने क्या लिखा है, तो उनको बुलाया जाता था. अब आप सोचेंगे ऐसे व्यक्ति की तो नेत्र की ज्योति कितनी अद्भुत होगी, लेकिन उनको ऐसी बीमारी थी, डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये बाय द टाइम ही इज 30-35 ही विल बी ब्लाइंड कम्प्लीटली. तो उन्होंने आके माँ को बोला कि मेरी तो ज्योति बहुत दिन तक शेष नहीं है. माँ ने उनको काम किया दिया टू टाइप आउट श्री अरविंदोज स्क्रिप्ट, और टिल 70 कोई उनसे कहीं डाउट है तो उनको लोग पूछते थे. ये सच है कि उनकी ज्योति फेल हो रही थी, वो एकदम सामने रख के जैसे स्कैनर होता है, लेकिन ही कुड सी एंड अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या लिखा है. अब अगर व्यक्ति लॉर्ड का लिखा हुआ पढ़ ले तो फिर और पढ़ने की क्या जरूरत है. कई बार लोग कहते हैं मेरी स्मरण शक्ति फेल हो रही है. पूछता हूँ महर्षि अरविंद का नाम याद है? हाँ हाँ. वो कैसे क्या है क्या स्मरण रखने योग्य है संसार में? तो इस प्रकार से एक समय आता है जब डिवाइन मदर उसको अपना बना लेती हैं. इमॉर्टली शी कंसीव्स हरसेल्फ इन हिम. फिर वो जो चाहती हैं वो व्यक्ति बनता जाता है. इन द क्रीचर द अनवेल्ड क्रिएट्रिक्स वर्क्स. हर फेस इज सीन थ्रू हिज फेस, हर आईज थ्रू हिज आईज, हर बीइंग इज हिज थ्रू ए वास्ट आइडेंटिटी. देन इज रिवील्ड इन मैन द ओवर डिवाइन. और उसके बाद वो बताते हैं, ए लॉन्ग डिम प्रिपरेशन इज मैंस लाइफ, ए सर्किल ऑफ टॉयल एंड होप एंड वार एंड पीस, ट्रैक्ट आउट बाई लाइफ ऑन मैटर्स ऑब्सक्योर ग्राउंड. और उसी को हम जीवन समझते हैं. ये पूरे वर्णन के बाद फिर जो लाइन आती है जो कनेक्ट करती है अशुपति के योग से, अंटिल एट लास्ट इज रीच द जायंट पॉइंट थ्रू विच हिज ग्लोरी शाइन्स फॉर होम वी वेर मेड. हम तो सोच रहे थे हम अपने माँ बाप के लिए बने हैं, और बचपन से हमारे माँ बाप कहते थे कि देखो हमारा कर्जा याद रखना. यही होता है ना, हमने बच्चे को क्यों संतान को लाए हैं? अपने लिए, बुढ़ापे का सहारा. कितनी विकृत और स्वार्थी मानसिकता है, पर इसी को हम लोगों ने बल दे दिया. लेकिन जितने भी रची नचिकेता हनुमान नंदी ये सब रिवेल्स थे, वो सब भगवान के लिए बने थे। ओरिजिनली हम भगवान के लिए बने क्योंकि वही तो ओरिजिन है, लेकिन बीच में ये माता पिता समाज ये सब कहाँ से आ गया। लेकिन समाज ये देखो हमारे लिए सब, लेकिन वास्तव में हम भगवान के लिए बने। सो ये है थ्रू विच हिज ग्लोरी शाइन्स फॉर होम वी वर मेड, हम उनके लिए बने हैं। एंड वी ब्रेक इन टू द इन्फिनिटी ऑफ गॉड across our nature's borderline, we escape into supernature's arc of living light. This now was witnessed in that son of force, तपस्या के द्वारा। son of force यानी तपस्या के द्वारा उनके अंदर जो नई चेतना का जन्म हुआ है, ये typical वैदिक expression है, जहां अग्नि को वैदिक ऋषि कई बार कहते थे offspring, offspring of our desire। हमने जिसके लिए तपस्या की उसके बाद हम देखते हैं ना कई तपस्वियों के जीवन में कि उन्हें तपस्या की उसके बाद एक संतति हुई। दिस इज वेरी सिंबॉलिक स्टोरी ऑल्सो, क्योंकि ये कई ऐसी स्टोरीज कई लेवल्स पर ऑपरेट करती हैं कि तपस्या के फलस्वरूप जो अंदर में और उसको चेरिश करना होता है, जैसे बच्चे को आप चेरिश करते हैं उस तरह से उसको चेरिश करना होता है और वो एजुकेट होता है, बड़ा होता है, ये पूरी एक अंदर की यात्रा है। सो यहां पर उसका वर्णन है that now was witnessed in that son of force, in him the high transition laid its base. पहला transition होता है जब हम human life in ignorance से free होकर एक human life in knowledge, हम oriented होते हैं कि जीवन जीना कैसे, यही नहीं आता, बाकी सब आता है, तो वो तब प्रकट होता है। और हम किस लिए बने हैं, हमारी हमारा स्थान क्या है इस संसार में, यूनिवर्सल कंसर्ट में हमारी हमारे लिए क्या जगह भगवान ने बना के रखी है, तो ये तब हमारे सामने प्रकट होता है जब हम सोल को जानते हैं। और ये उसका वर्णन है, इन हिम दिस फ्रेल मड इंजिन टू हेवन यूज, टू टर्न दिस फ्रेल मड इंजिन टू हेवन यूज, ए प्रेजेंस रॉट बिहाइंड द एम्बिगुअस स्क्रीन, इट बीट हिज सोल टू बेयर ए टाइटन्स वेट, रिफाइनिंग हाफ ह्यून ब्लॉक्स ऑफ नेचुरल स्ट्रेंथ, इट बिल्ट हिज सोल इन टू ए स्टैचूड गॉड। उसके बाद भगवान फिर क्या करते हैं साथ में धोबी पछाड़ कहते हैं आप आ जाओ मेरे पास, अब मैं अभी तक तो तू पत्थर था, अब मैं इस पत्थर में देव मूर्ति गढ़ने वाला हूं। हाँ भगवान, वाह सो नाइस, हाँ रुक जा, चीनी हथौड़ी निकालते हैं और शुरू करते हैं। उस समय खैर जो चैत्य को रियलाइज कर लेता है वो आनंदित होता है, वो कहता है तेरे तलवार के नीचे में नचियां करके छैया छैया, तो आनंदित होता है। लेकिन देखने वाला कभी कह सकता है कि अरे क्या हो रहा है इनके जीवन में, सही हो रहा है जो हो रहा है। इसी के द्वारा देव मूर्ति गढ़ी जाती है। अगर हम कंफर्ट चाहते हैं जीवन में तो वी शुड फॉरगेट अबाउट ऑल दिस, फिर वही है बस। लेकिन यदि हम तैयार हैं, प्रस्तुत हैं अपने अंदर इस रूपांतरण के लिए, तब हमको प्रस्तुत होना है भगवान के प्रति, वो जिस तरह से हमको ले जाए। ये सारा वर्णन है और एक एक लाइन इसकी अद्भुत है। और फिर नेक्स्ट मूवमेंट शुरू होता है कि कैसे धीरे धीरे अशुपति के अंदर वो नई क्षमताएं, नई पावर्स, नई संभावनाएं विकसित होने लगती हैं, दूसरे की चेतना उनको इफेक्ट करने लगती है, सारी जो आसपास हो रहा है, क्योंकि आप विश्व चेतना में प्रवेश करने लगते हैं स्पिरिचुअल चेंज के साथ, आप ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट एंटरिंग इनटू अ लार्जर फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस। तो शेरविंद इसको बताते हैं कि एक स्टेज होती है, जैसे एक साधना होती है बड़ी शेल्टर्ड सी साधना, जहां आप विश्व चेतना में प्रवेश नहीं करते हैं वास्टनेस में, तो आप केवल अपनी प्रॉब्लम के ऊपर वर्क करते हैं। लेकिन एक टाइम हो आता है जब आप विश्व चेतना में प्रवेश करते हैं और आपकी प्रॉब्लम अब आपकी प्रॉब्लम नहीं है, अब आप विश्व में उस प्रॉब्लम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी वो बढ़ती जाएगी, मल्टीप्लाई करेगी, कई रूप में सामने आएगी, एंड यू हैव टू कीप वर्किंग बिकॉज ये अब प्रोसेस है। इसीलिए जब श्री अरविंद श्री माँ के सामने ये निर्णय हुआ, उनको निर्णय लेना था कि हम पहले अकेले जा करके इस योग की अंतिम सत्य को, संसिद्धि को प्राप्त कर लें, या हम सबको साथ लेके चलें, तो माता जी बताती हैं कि द डिसीजन वॉज स्पॉन्टेनियस कि साथ में चलें। और फिर कहती हैं कि श्री अरविंद ने कहा कि इन एनी केस जैसे ही हम प्रगति करेंगे तो हम जुड़ जाएंगे लोगों के साथ, विदाउट वेदर वी वॉन्ट इट और नॉट, आप अकेले भी रहोगे तो आप जुड़ जाओगे सृष्टि के साथ, एक दूसरे ढंग से जुड़ जाओगे। तो उन्होंने कहा द डिसीजन वॉज स्पॉन्टेनियस, तो वो सारा वर्णन इसमें आता है, बहुत सुंदर वर्णन है। इनर बीइंग जब खुलता है तो हमारी इनर सेंसेस अवेक होती है, स्मेल की, डिपेंडिंग ऑन किसी की दृष्टि, किसी की श्रवण की, जो सारी सेंसेस हैं इनके पीछे एक इनर सेंसेस है, जो माइंड है उसके पीछे एक इनर माइंड है। केन उपनिषद में इसकी बात है कि जो चक्षु को मोटिवेट कौन करता है, चेतना, जो हमारी घ्राण शक्ति है, श्रवण शक्ति है, उसके पीछे क्या कार्यरत है, तो दैट इज कॉन्शियसनेस। और मन है उसके पीछे क्या कार्यरत है, विच इज द इंटेलिजेंस ऑफ आवर इंटेलिजेंस। तो वो जो है जो इन सबको मोटिवेट करता है फंक्शनिंग के लिए, जो ओरिजिन है इन सब का, जिनके ये यंत्र हैं, तदेव ब्रह्मन् त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते, उसको सीख करो। सो ये सारी चीज इसमें वो आता है कि वर्णन उसका आता है कि कैसे अशुपति अपने अंदर उनके इनर फैकल्टीज अवेकन होने लगती हैं। और ये वर्णन बहुत लंबा चलता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, और खासकर अशुपति, बिकॉज वो जीवन में रह के योग कर रहे हैं। महाभारत में जब सावित्री की कथा आती है तो अशुपति का योग सम 3 or 4 श्लोक में है, शेरविन 300 pages प्लस में है, तो उसको पूरा उन्हें विस्तार से बताते हैं। और कई चीज़ें जो नॉर्मली आदमी अवॉइड करता है, जो एडवेंचरर सोल है, हीरोइक सोल है, वो उसको स्वीकार करते हैं अपने जीवन में। एडवेंचर लिव्ड एन अनएक्सपेक्टेड फ्रेंड एंड डेंजर ब्रॉट ए कीन स्वीट टैंग ऑफ जॉय, ईच हैपनिंग वॉज ए डीप एक्सपीरियंस, देर वेर हाई एनकाउंटर्स, एपिक कोलोक्वीज एंड काउंसिल्स केम काउस्ट इन सेलेस्टियल स्पीच। तो ये सारा लंबा एक वर्णन चलता रहता है, और अब ये लास्ट में एक इस कैंटो के अंत में नहीं, लेकिन एक बहुत सुंदर वर्णन है, अद्भुत। लोग अक्सर पूछते हैं सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है, एंड यू विल सी ऑल काइंड्स ऑफ फनी आंसर्स कि ऐसे होता है, कुंडलिनी जागृत हो जाती है, वहां पहुंच जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, लेकिन आपके अंदर की चेतना की अवस्था क्या होती है? मुख्य चीज तो वो है, ये आपको एक विजन हो गया, एक वैसा एक्सपीरियंस हो गया अद्भुत एनर्जी का, जनरली इस तरह का वर्णन होगा। लेकिन यहाँ पे शेरविन बड़े ब्यूटीफुल ढंग से कि वो सारा जो हमारे अंदर अंतर्द्वंद्व है संसार के साथ और जगत के साथ, ये सारी डुअलिटी जो है, मेन चीज है इसका द्वंद्व, डुअलिटी, वो समाप्त हो जाती है, और हम किस अवस्था में चले आते हैं, एकत्व में। अब इसका वर्णन देखिए कितना सुंदर है, ये पेज 32-33 पर है। A vast unanimity ended life's debate. लाइफ का डिबेट क्या होता है, ये या वो, ऐसे या वैसे, लेकिन a vast unanimity. अब एक बहुत लंबा पैसेज है, रनिंग थ्रू मेनी लाइन्स, लेकिन वो एक ही सेंटेंस है। The war of thoughts that fathers the universe. इसके बाद व्यक्ति व्यू पॉइंट, ओपिनियन, तुम्हारी ओपिनियन है, मैं तुमसे झगड़ा करूंगा, अपने व्यू पॉइंट को आप पर थोपूंगा, इंप्रेस करूंगा, इट एंड्स, क्योंकि आप देखते हो कि उसमें भी सत्य है और इसके ऑपोजिट में भी सत्य है और एक ऊपर बड़ा सत्य है जिसमें ये दोनों रिकंसाइल हो जाते हैं। तो जब आप ऐसे देखोगे तो कैसे दिस वर्सेस दैट में लड़ोगे? इसका अर्थ ये नहीं कि आप इनडिस्क्रिमिनेट हो जाते हो, डिसर्निंग नहीं होते हो, वो भी है कि यू नो व्हाट इज ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, बट यू नो कि हर चीज की स्थान क्या है इस पूरी इवोल्यूशन की प्रोसेस में। The clash of forces struggling to prevail in the tremendous shock that lights a star as in the building of a grain of dust. तब भगवान की पूजन सब जगह होती है, आप उसमें भी गगन मंडल में भी थाल, आरती का थाल देखते हो, और मिट्टी के अंदर भी, धूल के कणों में भी आप उनका प्रसाद देखते हो। माता जी की एक प्रेयर है जिसमें वो कहते हैं कि ईच ग्रेन ऑफ सैंड इज एन ओकेजन ऑफ thy worship. हम उस मिट्टी को अगर इस भाव से अपने माथे पर लगा देंगे तो वो चंदन बन जाती है, क्योंकि वो भाव है, अवस्था है, ये जो मिट्टी है ये वास्तव में भगवान की मिट्टी है, इसके अंदर भगवान छिपे हुए हैं। तो इस भाव मात्र से वो मिट्टी इतनी अद्भुत पावन हो जाती है। द ग्रूव्स दैट टर्न देयर डम्ब एलिप्स इन स्पेस। अच्छा, ये चीज लोग करते भी हैं लेकिन एक लिमिटेड वे में करते हैं। आप देखें कि समाधि की जो रज है वो लोग ले जाते हैं, मिट्टी जो चेंज होती है ना, मिट्टी टाइम टू टाइम, एक तो है जब उन्होंने श्री अरविंद माता जी के, जब माता जी के शरीर को वापस डाला गया था तो मिट्टी निकाली थी उन्होंने, जो समाधि के अंदर डाली हुई थी, तो वो भी मिट्टी के पैकेट्स लोगों के पास, और फिर बाद में अभी मिट्टी समाधि के ऊपर जो होती है, जो चेंज होती है हर हफ्ते, तो वो मिट्टी ले जाते हैं लोग। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन अभी हाल में एक डॉक्टर हैं, वो बता रहे थे मुझे, उनका फोन आया था कि सर आपने मुझे वो मिट्टी दी थी, और जब भी मुझे ये सब कोरोना वरोना ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं, लोग डराते हैं, लेकिन जैसे ही मैं उस मिट्टी को अपने पास रखता हूँ तो एकदम अंदर ऐसी फेथ जाग जाता है, ऐसा सब कुछ जाग जाता है, मानो ये सारी चीज़ें दूर चली गई, ये होती नहीं उस समय। तो अब ये तो वो मिट्टी जो प्रसाद रूप में, लेकिन एक ऐसा भाव है, अवस्था है जहां हम कोई भी मिट्टी अपने ऊपर उठा के रगा लें। आप एक सरकंडे को उठा लेंगे, होती है ना कहानी, तो अस्त्र बन जाएगा। जब राम जी और लक्ष्मण जी और सीता जी वनवास में हैं, तो इंद्र के बच्चा भाई जयंत, वो कहता है मैं जरा टेस्ट करूं, ये भगवान भगवान कह रहे हैं, कौन से भगवान हैं, मैं भी जरा देखूं, साधारण मनुष्य की तरह बैठे हुए हैं, भगवान कह रहे हैं। तो जाके माता सीता के पांव में अपना कौवा बन के चोंच मारता है, तो चोंच मारता है तो माता सीता देखती हैं, श्री राम लक्ष्मण देखते हैं उनको, नेचुरली कि ये क्या कर रहा है, ये तो अनरिथम हो गया, डिवाइन मदर को पहचान नहीं रहा है। तो वो उस समय एक तृण उठाते हैं और तृण को उस कौवे के पीछे डालते हैं, तो कौवा कहता है तृण ये भी कोई अस्त्र होता है, लेकिन वो तृण एक बाण की तरह उसका पीछा करता है। अब वो तो इंद्र का भाई है, इस लोक उस लोक जाते हैं, जहां जहां ब्रह्मा जी के पास जाता है कि ये क्या है, क्या है ये लोग, इन्होंने ऐसा तृण फेंक दिया, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। ब्रह्मा जी कहते हैं यहां से भागो जल्दी, यहां रहोगे वो तृण यहां आ जाएगा, मेरे लोक खतरे में पड़ जाएगा। भागता भागता फिर वो शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी ये क्या हो गया, कहते ना तू अपने भाई के पास जा, यहां मत आ, वो तृण मैं जानता हूं क्या करने वाला है। वो लास्ट में घूमते फिरते उनको एडवाइस मिलती है कि जहां से आया है वहीं जाओ शरण में, इस तृण का इलाज नहीं है। तो जाके फिर जब श्री राम की शरणागति में आता है तो वे रोकते हैं ना, इस स्टोरी की एक तृण में वो शक्ति आप जागृत कर सकते हो, क्योंकि उसमें वो है पर आप नहीं जानते हो। यही एक अंतर होता है एक योगी उसमें, कि वो एक तृण को भी ले लेगा कि भगवान ये है। आप कहीं ना कहीं तो कभी इस धरती के ऊपर उतरे हो, और जब आपने धरती को टच किया है तो इस धूल को, वो टच कंटेजियन के द्वारा इसके अंदर है, और उसको ले लें। जैसे माता सीता जब रावण पास में आते हैं तो कहते हैं ये तृण है, इसकी ओट में हूं मैं, तो इसको क्रॉस मत करना। तो ये एक आंतरिक अवस्था है जिससे हम ऐसी चीजें कर सकते हैं। तो वो सारा इसका वर्णन है कि सब चीज में वो देखने लगते हैं। द ग्रूव्स दैट टर्न द डंब एलिप्स इन स्पेस प्लाउड बाय द सीकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स डिजायर द लॉन्ग रीगर्जिटेशंस ऑफ टाइम्स फ्लड्स द टॉर्मेंट एजिंग द डायर फोर्स ऑफ लस्ट दैट वेक्स काइनेटिक इन अर्थ्स डलर्ड स्लाइम एंड कार्व्स ए पर्सनैलिटी आउट ऑफ मड। डिजायर का भी रोल है, लस्ट का भी रोल है, हर चीज जो एक पर्सनैलिटी के विकास में जो बिल्कुल मिट्टी का ढीला है उसके अंदर डिजायर ही आके पहले। जो जड़वत व्यक्ति है, बड़ा आलसी व्यक्ति है, उसको मेडिटेशन का भी मत बताना, उसको तो बहुत साधु बनने के लिए बड़ा उत्सुक रहते हैं ऐसे लोग। क्यों? वहां पर जो कुछ करना नहीं होगा, भिक्षा मिलेगी, यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो वो सब चीजें जो वो देख रहे हैं कि दृष्टि में द सोरो बाय विच नेचर्स हंगर इज फेड, कितनी अद्भुत लाइन है। दुख आता है तो नेचर के अंदर हंगर क्या है, इन्फिनिट की है। जब आप सुखी रहते हैं तो आपकी वो हंगर बुझ जाती है। तो भगवान जब किसी को विकास के लिए तैयार करता है तो उसको सुखी नहीं होने देता है, कहता है ये जीवन का सुख नहीं दूंगा, है दिखा देंगे ग्लिम्स की है, देखो रखा हुआ है मैंने, लेकिन दूंगा नहीं तुझे। क्योंकि तुझे मिल गया तो फिर तू इतना मगन हो जाएगा। तो वो कहते हैं थोड़ा वनवास जैसे राम जी का सीता जी का, इट इज ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस, बिकॉज अगर वो आपको मिल जाएगा तो द सोरो बाय विच नेचर्स हंगर इज फेड। अब वो सोरो यानी ज्ञानी जानता है कि ये सोरो नहीं है, पर वो फिर भी उसको अपने समझता है उसका प्रयोजन। द ईस्ट्रस विच क्रिएट्स विद फायर ऑफ पेन, जैसे एक अंडे के अंदर वो चूजा जन्म लेता है, तैयार हो रहा होता है। द फेट दैट पनिशेज वर्च्यू विद डिफीट, द ट्रेजेडी दैट डिस्ट्रॉयज लॉन्ग हैप्पीनेस, The weeping of love, the quarrel of the gods, seized in a truth which lives in its own light. जब हम उसको प्राप्त कर लेते हैं तो ये सारी चीजें चली जाती हैं, नहीं तो फेट दैट पनिशेज वर्च्यू विद डिफीट. क्यों? यहां पहुंचना है इसलिए. ये विजडम है जो संसार में काम कर रही है, जो फेल्यूर के द्वारा अल्टीमेट सक्सेस के स्टेप्स हमारे लिए कार्व करती है. तो ये सब कुछ उनके सामने प्रकट हो जाता है, वो पूरा बीइंग उनका शांत हो जाता है, सुख में हो जाता है, आनंद में हो जाता है, क्योंकि सब चीज के अंदर अब वो भगवान का मंगलमय विधान देख रहे हैं. पाप पुण्य का नहीं, ड्युअलिटी समाप्त हो गई है, सब कुछ मंगल में है, सब कुछ कल्याण में है. हिज सोल स्टूड फ्री, ए विटनेस एंड ए किंग. हम लोग यहां पर रुकेंगे, इसका सेकेंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे. इसको फिर से एक बार दो तीन लाइन पढ़ के देन आई वुड स्टॉप. इसी पोर्शन में लास्ट की पार्ट है. हिज सोल कुड सेल बियॉन्ड थॉट्स ल्यूमिनस बार. माइंड स्क्रीन नो मोर द शोरलेस इन्फिनिट. Across a void retreating sky he glimpsed through a last glimmer and drift of vanishing stars the superconscient realms of motionless peace where judgment ceases and the world is mute. Judgment ye bhi duality agyan ki avastha ka pratik hai. Aap judgment se pari chale jate ho. Kyon? Kyunki aap har cheez ke andar wisdom kaise kaam kar rahi ho usko dekh rahe ho. अज्ञान में इसकी आवश्यकता है, बट जब आपको ज्ञान हो जाता है तो वो चीज समाप्त हो जाती है. एंड द अनकंसीव्ड लाइज पाथलेस एंड अलोन. जब हम अज्ञान में रहते हैं तो ये पथ चुने कि वो पथ चुने, जब ज्ञान आ जाता है तो आप देखते हो कि हर चीज उनका पथ है. द पाथ इज एवरीवेयर. माता जी प्रेयर्स एंड मेडिटेशन में कहते हैं ना कि द पाथ इज एवरीवेयर. वो कहीं सीमित नहीं है कि ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग. हर चीज भक्ति का, प्रेम का माध्यम बन सकती है, भगवान की एडोरेशन का. हर कर्म आपका ईश्वर की ओर ले जा सकता है. ये सर्व कर्मानी एक्चुअली श्री कृष्ण सेज दिस इन द गीता, पर हम लोग उसको भी बाद में एक नाम दे करके सीमित कर देते हैं. ज्ञान एक बच्चे की वाणी में आपको भगवान की वाणी सुनाई दे सकती है कि अरे वाह अद्भुत. तो वो एक ऐसी अवस्था है जिसमें अनकंसीव्ड लाइज पाथलेस एंड अलोन. There came not form or any mounting voice, or there only were silence and the absolute. Last में इसके line आती है. He knew the source from which his spirit came. तब ये पता चल जाता है कि हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं. Movement was married to the immobile vast. He plunged his roots into the infinite. He based his life upon eternity. हमारा जीवन सीमित चीजों के लिए हम जीते हैं, परंतु जो अनंत शाश्वत को जान जाते हैं वो इन सीमित लाभ के लिए, सीमित सुख के लिए जीवन नहीं जीते हैं. वो अपने जीवन का आधार टेम्पररी ट्रांजिएंट थिंग्स, क्षणिक सुख, क्षणिक उन्माद, इस पर बेस नहीं करते हैं. वो फोकस करते हैं इटर्नल, एब्सोल्यूट और इन्फिनिट पर. तो यहाँ पर हम लोग रुकेंगे. जब अगली बार हम लोग पढ़ेंगे तो उसका नेक्स्ट पार्ट, ये लंबा है कैंटो, so we'll take the next part next time. धन्यवाद.